कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता, तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, संबंधों का रिश्ता। तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
बहुत सुंदर, तपस्या ही है जीवन की सच्ची सुंदरता। तो हर दिन आपको स्वमान भी मिलेगा। तो आज का पहला दिन जो योग तपस्या भट्टी के लिए आए हैं, तो आज का स्वमान है, मैं तपस्वी मूरत आत्मा हूँ। और जो भट्टी का लक्ष्य है, चलो संपन्नता की ओर, और उस संपन्नता का आधार है श्रेष्ठ योगी तपस्वी जीवन। तो इस विषय पर मार्गदर्शन देने हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं दीदी का परिचय आपको दूं, उससे पहले आप सभी का परिचय, जो इस ज्ञान मार्ग में चलते जिनको 1 से 5 वर्ष हुए हैं वे हाथ खड़ा करेंगे। 1 से 5, नीचे करेंगे। जो 5 से 10 वर्ष के बाबा के बच्चे हैं ये भी है, जो 10 से 15 इसमें भी है कुछ, 15 से 20 इसमें भी है, और जो 20 से ऊपर है सभी में हाथ खड़े हुए हैं। मतलब ये मिक्स ग्रुप है। बाबा कहते हैं ना यूनिवर्सिटी है जब बालक भी पढ़ता है और बूढ़ा भी पढ़ता है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं दीदी का परिचय दे दूं आप सभी को। दीदी बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय मार्ग से जुड़े हैं। आप मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं, और चूंकि मुंबई से निकले हैं तो मम्मा बाबा की पालना वहीं से शुरुआत हो गई आपकी, और फिर तो आप लौकिक पढ़ाई भी पढ़ते रहे और अलौकिक पढ़ाई भी पढ़ते रहे, और फिर 1969 में जिस वर्ष ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए उसी वर्ष आपने अपनी साइंस ग्रेजुएशन की एग्जाम दी, और वो एग्जाम देकर आप मधुबन में आए, और उस समय जो पहली भर्ती हुई कन्याओं की टीचर बनने के लिए वो आपने अटेंड की, और वहाँ से आप राजयोग टीचर की लाइफ शुरू किया, समर्पित जीवन की यात्रा आपने आरंभ की। तो दादियों ने आपको पहले राजकोट, हैदराबाद, बेंगलोर, फिर नेपाल भी भेजा, उसके बाद अफ्रीका में भी भेजा और मॉरिशस में भी। तो 69 से 76 तक बाबा और दादियों के डायरेक्शन से देश विदेश की धरनी पर सेवाएं दी, बाबा का नाम वहां बाला किया, अनेक बाबा के बच्चों के भाग्य को उदय किया, सेंटर सेवा केंद्र स्थापित करने के निमित्त बनी, और 76 में जब आप यहाँ मधुबन आए तो आपके लिए बाबा ने एक सुंदर गोल्डन लॉटरी खोल के रखी, और वो क्या है, आपको सुंदर ऑफर मिला। अब बहुत हो गई देश विदेश की धरनी की सेवाएं, अब एक स्थान मधुबन स्थान पे रहकर देश विदेश की सेवाएं करनी है, क्योंकि देश विदेश के भाई बहने इस धरनी पर आते थे, और उनकी सेवा करने के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए थी बाबा ने दादियों ने आप में देखी और आपको सुंदर अवसर प्रदान किया। तो उसी 1976 से लेकर आज दिन तक आप इस मधुबन धरनी पर रहकर देश विदेश की सेवाएं कर रहे हैं। 70 से भी अधिक देशों का आपने भ्रमण किया है, बाबा ने सुंदर वरदानों से आपको सजाया है। एक तो आपकी जीवा पर विद्या की देवी सरस्वती सदा विराजमान रहेगी, और दूसरा आप कौन सी गंगा है, हर की पौड़ी की गंगा, सिर्फ ज्ञान की गंगा नहीं, ज्ञान की गंगा तो हर टीचर बहन है, लेकिन बाबा ने आपको स्पेशल कहा कि आप हर की पौड़ी की गंगा है, जो हरिद्वार में होती है ना, जिसमें सभी आके स्नान करते हैं, कि देश विदेश के सभी बड़े बड़े कहलाने वाले इस दर पर आकर आपसे बाबा का संदेश प्राप्त करेंगे। और आप हमारी जो एजुकेशन विंग है उसके वाइस चेयरपर्सन है, राजयोग शिविर के आप डायरेक्टर हैं, आज जो हमारी मीडिया के माध्यम से टीवी के माध्यम से जो सेवाएं चल रही है 24 आवर्स, 1993 में आप ही वो प्रथम ब्रह्मा कुमारी थी जिन्होंने टीवी स्क्रीन पर बाबा का ज्ञान सर्व को पहुंचाया, तो उसकी भी फाउंडेशन आपने डाली। तो बहुत सारी विशेषताओं को लिए हुए, मधुरता, धैर्यता, नम्रता से संपन्न, बहुत ऊंची हस्ती, लेकिन फिर भी हर एक से ऐसे मिलती, हर एक को ऐसा लगता दीदी तो हमारी अपनी है। वर्षों तक इस धरनी पर रहकर बाबा से दादियों से जो पालना ली है और आज जब दादियां अव्यक्त हो गई हैं, उसी पालना का रिटर्न आप सर्व को देती हैं। तो आज ऐसी महान हस्ती से, उन्होंने अपने जीवन में इतने वर्षों से जो अनुभव किया है, उस अनुभव के आधार से हमारे सामने इस विषय को स्पष्ट करेंगे कि सफलता का आधार श्रेष्ठ योगी तपस्वी जीवन, वो हमें मार्गदर्शन देंगे। आदरणीय दीदी जी,
अपना परिचय दे।
शरीर का नाम इंद्रा बहन है, 87 में ज्ञान प्राप्त किया और 98 में ये जीवन सेवाओं के लिए समर्पित किया। समर्पित जीवन की यात्रा हेडक्वार्टर ज्ञान सरोवर से आरंभ हुई, जहां पर 5 वर्षों तक स्पार्क ऑफिस में सेवाएं दी, जहां बाबा ने इस आत्मा को मनोबल एवं मनसा सेवा की बुक, जो लिटरेचर में अवेलेबल है, वो लिखने के लिए निमित्त बनाया। और उसके बाद सेवा केंद्रों का भी अनुभव कराया कि 5 वर्ष स्पार्क ऑफिस में सेवा देने के बाद, हम चूंकि नागपुर सब छोन से हैं, तो नागपुर सेवा केंद्र पर रहने का अवसर मिला। और चूंकि स्पार्क से जुड़े थे, तो रमेश भाई उषा बहन से जुड़े थे, तो नागपुर के बाद गामदेवी सेंटर पर रहना हुआ। और उसके बाद पिछले 10-12 वर्षों से पुनः हेडक्वार्टर में, लेकिन ज्ञान सरोवर से पांडव भवन आ गए, जहाँ शीलू दीदी के साथ ग्लोबल ऑफिस में सेवाएं देते हुए उनकी जो सेवाएं हैं, उनमें सहयोगी के रूप में अपना पार्ट प्ले करते हैं। ओम शांति। तो अभी सुनते हैं दीदी से।
ओम शांति,
ओम शांति,
ओम शांति। दादी जानकी जी ने हमें 3 बार ओम शांति कहना सिखलाया। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, जिसका नशा दादी जानकी को स्वयं था और वो नशा हम सब में भरा। तो आप सभी भाई बहने अटलादरा से पहुंचे हैं, अटल दरवाजा। हाँ, मुझे कहा अटलादरा याद करना है तो याद करो अटल दरवाजा तो अटलादरा याद आ जाएगा। तो सचमुच अटलादरा के भाई बहने अवश्य अटल, अडोल, स्थिर, एक रस, निर्विघ्न, बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले ऐसे तपस्वी मूरत अपने आप को समझते हो? बाबा पूछते हैं ना, ऐसे समझते हो? तो जो समझते हैं हाथ उठाएं। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब उस तपस्या में और छाप लगाने लिए आप इस योग तपस्या भट्टी में पहुंचे हो और बहुत सुंदर लक्ष्य मिला है, चलो संपन्नता की ओर। क्योंकि समय बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, अंत के नज़ारे भी स्पष्ट होते जा रहे हैं। और बाबा ने हम बच्चों को अचानक का पाठ तो पढ़ा ही दिया है, अचानक होगा, पहले से बताया नहीं जाएगा, सब कुछ अचानक होगा। और हम देखते आए हैं कैसे अचानक का खेल चलता रहा है। हमारी दादियां अव्यक्त हो गए, लेकिन अभी हम ये नहीं कहेंगे कि दादियाँ हमारे साथ नहीं है, ब्रह्मा बाबा मम्मा सब दादियाँ हमारे साथ ही हैं, हम उनकी ही छत्र छाया में पल रहे हैं, उनकी ही दुआएं हमें मिल रही है और उसी सकाश के आधार से हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बाबा ने ये भी वायदा किया है कि हम सब साथ चलेंगे। यज्ञ की शुरुआत में बाबा ने यही कहा था, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ नई दुनिया में आएंगे। तो साथ रहेंगे ये जब कहा तो उस समय किसने भी ये नहीं समझा कि इसका मतलब क्या है। उन्होंने अर्थ क्या निकाला कि कोई भी शरीर नहीं छोड़ेगा, साथ रहेंगे तो कैसे शरीर छोड़ेगा, कोई भी शरीर नहीं छोड़ेगा, हम सब ऐसे ही साथ रहेंगे, ऐसे ही भट्ठी में रहेंगे, तपस्या करेंगे और सब साथ में उड़ जाएंगे, यही सोचा था। लेकिन ये उनको नहीं मालूम था कि इसका सही अर्थ ये नहीं है, लेकिन सही अर्थ है कि अंत के समय अवश्य हम सब साथ उड़ेंगे। और तब तक हर एक अपने अपने पाठ अनुसार वो अपना कर्म पूरा करते हुए और पाठ में जाएंगे, ये उस समय तो सोचा नहीं था। लेकिन अभी ये बात समझ में आती है। तो सबसे पहले जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तब थोड़ा समझ में आया, क्योंकि मम्मा ने जब शरीर छोड़ा 65 में, तब बाबा ने संदेश दिया कि अभी एडवांस पार्टी शुरू हुई है और एडवांस पार्टी की लीडर मम्मा बनेगी। यहां भी मम्मा लीडर थी, सबको लीड करती थी, आगे बढ़ाती थी, और अभी एडवांस पार्टी की भी वो पहली लीडर बनेगी। और इनडायरेक्टली ये भी संकेत था कि अभी एडवांस पार्टी में जाएंगे। लेकिन चलो, ये सोचा था कि बाबा तो साथ है, मम्मा एडवांस पार्टी की लीडर बनेगी, अभी कौन होंगे एडवांस पार्टी में वो तो पता नहीं था। लेकिन फिर जब बाबा अव्यक्त हुए तो सबके मन में संकल्प चला, बाबा चले गए तो फिर इस संस्था का क्या होगा, मुरली कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलन मनाएंगे, क्योंकि शिव बाबा तो ब्रह्मा तन में ही आते हैं, भगवान के महावाक्य ब्रह्मा द्वारा ही हमें मिलते हैं, तो फिर कैसे अव्यक्त बाप दादा का पाठ शुरू हुआ जो पहले पता नहीं था, दादियों को भी पता नहीं था, लेकिन बाप दादा ने यह राज बताया कि अभी अव्यक्त रूप में सेवाएं और भी बढ़ेगी। अब तक तो चीटी की चाल से सेवाएं हो रही थी और अब बाबा के अव्यक्त होने से ब्रह्मा बाप शिव बाप का कंपेनियन बन गया और अभी तो विहंग मार्ग से सेवाएं होगी। तो चीटी की जो गति होती है, स्पीड होती है, वो कैसी होती है और पक्षी की स्पीड कितनी होती है। तो साकार बाबा मम्मा के समय तो जैसे सेवाएं चीटी की चाल की तरह थी, थोड़े थोड़े सेवा केंद्र थे, हजारों में ही होंगे भाई बहने, सौ में कोई सेंटर्स होंगे। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी जी और दीदी जी दोनों ने मिलकर दो हंसों का जोड़ा बनकर इस विश्वविद्यालय को इतनी गति दी जो दिन दुगनी रात चौगनी गति से ये संस्था आगे बढ़ी। और अव्यक्त बाप दादा ने यही कहा कि बाप दादा अभी बैकबोन बन जाएंगे, शिव आधार है जरूर, ब्रह्मा बाबा आधार है, और शक्तियां मैदान में आएंगी। जिन शिव शक्तियों का गायन है वो शक्तियां मैदान में आएंगी और शिव शक्तियों को प्रकट करेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे, और शक्तियां शिव को प्रत्यक्ष करेगी। और अभी अव्यक्त रूप से भी सेवाएं चलेगी, देश विदेश की सेवाएं होगी। और सचमुच जो साकार में बाबा ने कहा था वो साकार होने लगा। साकार में बाबा कहते थे तुम्हारी मिशन विदेश में जाएगी। ब्रह्मा बाबा के साकार में होते हुए कोई विदेश में सेवाएं नहीं थी, लेकिन जैसे बाबा अव्यक्त हुए विदेशों में सेवाएं शुरू हुई, जिससे इस संस्था का नाम और आगे बढ़ा। बाबा ने कहा था विदेशी बच्चे जब भारत में आएंगे और बाबा का ज्ञान सुनाएंगे तब ये भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। तो सचमुच वो भी देखा, विदेशी बच्चों ने कितनी कमाल कर दी, जो यूएन के भी मेंबर बन गए हम। 140 देशों में बाबा के सेवा केंद्र चल रहे हैं और अव्यक्त बाप दादा की पालना ले रहे हैं। तो भारत में तो हम ब्रह्मा की मुख संतान थे, लेकिन वो हम उनको कहेंगे कि ये संकल्प संतान है। तो संकल्प की गति तो आवाज की गति से और तेज होती है ना, तो इतनी तेज गति से वो आगे बढ़ रहे हैं। और रोज कहीं ना कहीं ऑनलाइन विदेश में मधुबन से क्लासेस होते रहते हैं, इतने उमंग उत्साह में है वो। चाहे कितना भी दुनिया में लॉकडाउन है लेकिन बाबा के बच्चे सब सुरक्षित है वहाँ। भारत में फिर भी थोड़ी उथल पुथल हुई, लेकिन विदेश में कोई भी उस कोरोना के कारण शरीर नहीं छोड़ा। इतने बाबा ने कैसे सबकी रक्षा की, हर एक का अपना अपना पार्ट है। और अभी भी इतनी लगन से वो आगे बढ़ रहे हैं और उत्सुक है कब फ्लाइट्स शुरू हो और हम मधुबन में दौड़ के आए। लेकिन वो तो ड्रामा ही बताएगा। लेकिन ये सब जो कुछ भी हम देख रहे हैं, महसूस हो रहा है कि अभी अंत दूर नहीं है, सब अचानक ही होगा, पर उसके लिए हमें एवर रेडी रहना होगा। क्योंकि अचानक के लिए तो हर वक्त तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि कभी भी बुलावा आ जाए, वो अंत तो बाद में, अपना ही कुछ पता नहीं है ना, कभी भी अंत आ जाए। इसीलिए एवर रेडी रहना होगा। पर एवर रेडी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं एवर रेडी, संपन्न संपूर्ण बनकर ही एवर रेडी होना है। ऐसे भी नहीं बाबा मैं तो तैयार हूँ पर संपन्न कहाँ बने हैं। ब्रह्मा बाबा कैसे संपन्न और संपूर्ण बने? गुलजार दादी को सबसे पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार हुआ और उसमें उस सूक्ष्म वतन में अव्यक्त ब्रह्मा बाप को देखा और अव्यक्त बाप ने कहा, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा ने उनको कहा कि जो साकार में ब्रह्मा है मैं उनका संपूर्ण स्वरूप हूँ और जो साकार में ब्रह्मा बाप है वो संपूर्ण बनकर ये बनेगा। तो संपूर्ण रूप ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता रूप में देखा। सबसे पहले साक्षात्कार सूक्ष्म वतन का गुलजार दादी जी ने किया और फिर ड्रामा अनुसार कैसे वही निमित्त बनी, अव्यक्त बाप दादा का रथ बनी। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को पता चला कि मेरा संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में मेरा इंतजार कर रहा है, तो ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ और तेज होता गया और गुलजार दादी को बाबा बीच बीच में कहते थे कि जाओ देखो वतन में कि ये साकार रूप और अव्यक्त रूप में बाकी कितना फासला है, कितना अंतर है, ताकि ब्रह्मा बाबा वो तय करके उस संपूर्ण रूप तक पहुंचे। तो गुलजार दादी बताती थी और धीरे 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 वो फासला जो अंतर था वो कम होता गया होता गया होता गया। तो बस बाबा को तो लगन ही लग गई ना, मुझे संपूर्ण बनना है। तो देखो कैसे 33 वर्ष ही केवल लगे और ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने। अन्य दादियां भी कर्मातीत बनी, हमने सबको देखा। कर्मातीत और संपूर्ण में थोड़ा सा अंतर। कर्मातीत माना कर्म के बंधन से अतीत। उस दिन भी अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, एक है कर्म बंधन और दूसरा है कर्म संबंध। तो कर्म बंधन तो दुखदाई है, तो कर्म भी करना है पर ऐसा नहीं जो बंधन बन जाए। कर्म संबंध में आना है और धीरे धीरे हिसाब किताब चुकतू करने हैं, क्योंकि छोड़ तो सकते नहीं है। तो दादियां हमारी कर्म संबंध में आती गई और हम देखते थे सब दादियां धीरे धीरे कैसे इतनी सेवाएं थी, इतनी सेवाएं, और धीरे 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 संपूर्णता को प्राप्त, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते गए, न्यारे और प्यारे रहे। मैं एक केवल उदाहरण देती हूँ, उसमें सब आ गए उदाहरण। हमारी दादी जानकी जी यूनाइटेड नेशंस में जब उनका जाना हुआ, वहाँ उनका भाषण था यूनाइटेड नेशंस के अंदर, क्योंकि हम भी एनजीओ हैं और यूनिसेफ एक और उनके कॉसॉक मेंबर हैं हम उनके। तो ब्रह्मा कुमारियों को निमंत्रण दिया, तो दादी जानकी ने 3 मिनट का भाषण किया केवल इंग्लिश में, जो उनको लिखत दी थी वो पढ़ के सुनाई। और बहुत कुछ ब्रह्मा कुमारियों का नाम हुआ उस समय यूनाइटेड नेशंस में। तो उसके बाद दादी मधुबन में आई, तो हमने दादी जानकी से केवल इतना ही पूछा, दादी वो आप अनुभव सुनाना यूएन में जो आपने भाषण किया, दादी कैसा था, कैसा रहा, इतने बड़े बड़े लोग यूएन में थे और आपने कैसे भाषण किया, वो अनुभव सुनाओ। तो दादी कहती है, क्या अनुभव, मैं तो भूल भी गई। क्या कहा दादी ने, मैं तो भूल भी गई, बस जो बात गई वो गई, कहते ना जो बीता सो बीता, रात गई बात गई, फिर सवेरे नहीं उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, मैं तो भूल भी गई। जो काम की बात है वो दादी कभी नहीं भूलती थी, परंतु जो हुआ पूरा हुआ, फुल स्टॉप लगा लिया, फिर थोड़ी उसको याद करेंगे। तो हमने एक एग्जाम्पल केवल ये दिया। तो दादियां तो कभी भी अपनी सेवाओं का बखान नहीं करते थे, मैंने ये किया, मैंने 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 मैं कभी नहीं सुना, बस बाबा ने कराया, बाबा करण करावन हार है। मैं तो कभी इनके मुख से निकला ही नहीं। अगर कुछ सावधानी भी देनी होती तो कहेंगे दादी जी कह रहे, दादी कह रहे, दादी जी भी नहीं, दादी माना मैं अभिमान वश नहीं, दादी माना ये जैसे बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है। तो कैसे धीरे धीरे कर्मातीत बनते गए, न्यारे प्यारे होते गए, नहीं तो हम दादियों को देखते थे, दादी प्रकाशमणि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, सब में कैसे दादी का हाथ था, सब सारा यज्ञ पूरे सेंटर्स न जाने क्या क्या सब कुछ, लेकिन कैसे धीरे धीरे दादी उपराम होती गई होती गई होती गई और दूसरे संभालते गए संभालते गए। हम बहुत कुछ दादी से पूछते थे, दादी ये कई बातें, तो दादी डाउन टू अर्थ माना बिल्कुल जैसे हम सब की तरह होकर कैसे दादी मिलती थी, बातें सुनती थी। बाबा मम्मा भी ऐसे ही पहले सुनते थे, फिर वो भी न्यारे होते गए, तो दादियों को भी हमने देखा कैसे न्यारे होते गए होते गए। हम सोचते थे दादी तो वही है, पर दादी को ये बताएंगे वो बताएंगे, लेकिन जैसे दादी के पास जाते थे सब बातें भूल जाती थी, सब बातें भूल जाती थी, क्या सुनाएं। दादी की स्टेज इतनी ऊंची देखते थे तो हमारी बातें तो छोटी छोटी बातें, क्या हम दादी को सुनाएं। वो वैसे ही सब भूल जाती थी, वो वैसे ही खत्म हो जाती थी, और लगता था वह दादी से ही सुने, दादी से ही सुने, वरदानी बोल दादी के ही सुने। और धीरे धीरे फिर वो भी न्यारी स्थिति हो गई। गुलजार दादी को भी हमने देखा, बस कुछ भी पूछो जवाब एक वाक्य में, बस 10 वाक्य भी नहीं और एक में सार आ गया। दादी जानकी को भी अंत में यही देखा। तो हम ये कहेंगे कि संपूर्ण संपन्नता और संपूर्णता की निशानी क्या है, उपराम, उपराम न्यारापन। तो न्यारापन लाने के लिए पहले तो बाबा कहते हैं मैं और मेरा खत्म करो, इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, अगर मैं कहने की आदत भी है ना, मैं तो क्या कहो क्या कहो, मैं आत्मा आत्मा। और मैं आत्मा कहा तो आत्मा की जो बातें हैं वही बुद्धि में आएगी, अगर केवल मैं कहा तो देह अभिमान में आएंगे और फिर व्यक्ति वस्तु वैभव न जाने क्या क्या सब बातें बुद्धि में आ जाएगी। और अगर मेरा कहने की आदत है, चलो मेरा मेरा दिन भर मेरा मैं मेरा कहते हैं, तो मेरा कहने की आदत है, वो आदत को दूसरा रूप दो, मेरा कहना और तुरंत क्या कहो, मेरा बाबा, बस मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। कई कहते हैं व्यर्थ संकल्प आते हैं, अब व्यर्थ संकल्प जो आते हैं वो क्या होते हैं, व्यर्थ संकल्प क्यों उसे व्यर्थ संकल्प कहते हैं, है तो वो सांसारिक संकल्प, ज्ञान के संकल्प तो व्यर्थ संकल्प नहीं है। तो व्यर्थ संकल्प आते हैं, हम योग में बैठते हैं तो कौन कौन से आते हैं और खत्म कैसे करें, बाबा ने उसकी भी युक्तियां बताई है। तो हम 5 बातें बताते हैं, व्यर्थ संकल्प कौन कौन से आते हैं, किस किस के आते हैं। पहले तो व्यक्ति याद आएंगे, है ना, व्यक्ति फलाना मेरा मेरा ये फलाना, तो व्यक्तियों की याद आएगी, ये भी व्यर्थ संकल्प के खाते में जाएगा। जबकि बाबा कहते देश है देह के सब संबंधों को भूलो, सब संबंध मेरे से जोड़ो, लेकिन अगर बाबा से सर्व संबंध नहीं जुड़े हैं तो व्यक्ति याद आएंगे। फिर दूसरा क्या याद आएगा, वस्तुएं याद आएगी। व्यर्थ संकल्पों में क्या क्या याद आता है, वस्तुएं याद आएगी, वो मेरी चीज वो मेरी चीज वो मेरा फलाना न जाने क्या क्या वस्तुएं। तो बाबा कहते ये वस्तुएं भी तो संसार की है, मेरी तो है नहीं, कुछ भी मैं आत्मा लेकर नहीं आई, न कुछ लेके जाऊंगी, मेरा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहते तो है ना अकेले आए या अकेले जाना है, न कुछ साथ लाए हैं न कुछ साथ जाएगा। तो व्यक्ति तो जाएंगे नहीं पर वस्तुएं भी तो नहीं जाएगी, वो भी तो सब यहीं रह जाएगी, और आए थे तो लेके तो नहीं आए थे, ये संसार की है, प्रकृति की है, प्रकृति को ही वापस देकर जाना है। वो अलग बात है कि हम इसका कैसे सदुपयोग करके इसको वापस दे रहे हैं, 10 गुना करके दे रहे हैं, 1000 गुना करके दे रहे हैं, या उसको नष्ट करके जा रहे हैं, अब हमारे ऊपर है। लेकिन लेके नहीं जाएंगे। तो वस्तुएं, तो व्यक्ति, वस्तु और वैभव, तीसरा है वैभव। तो वैभवों के लिए तो बाबा कहते हैं तुम तो जीते जी मर जाओ, आप हुए मर गई दुनिया, बेहद के वैरागी बनो। वैसे ही सब खत्म होना है तो क्या मेरा मेरा करके करेंगे। अर्जुन को यही तो कहा, ये सब मरे पड़े हैं, कुछ भी साथ नहीं चलना है। ये वैभव, धन संपत्ति, बाबा कहते हैं कि बेहद के वैरागी बनो, हर एक वान परस्ती है, कोई भी न सोचे मैं तो जवान हूँ। और अभी तो समय ही ऐसा है, कोई समझ ही नहीं सकता कि मैं हाँ कभी जल्दी जा सकता हूँ, कभी भी जा सकते हैं। मृत्यु न बच्चा देखती है, न बूढ़ा देखती है, न जवान देखती है। तो इसीलिए सब वान परस्ती है, सबको वापस घर जाने का समय है। इसीलिए वैभवों में क्या दिल लगाना। और ये बाबा कहते हैं अगर ज्यादा कुछ रखेंगे तो मन जाएगा, चोर लूट न जाए, आग जला न दे, सरकार रेड न कर ले, कुछ भी हो सकता है। तो किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसकी आग जलाए। और बाबा ये भी मना करते हैं, ये इतना सारा जेवर वेवर पहनो भी नहीं, सतयुग में तुमको बहुत कुछ मिलेगा, अभी तो वनवा में हो, है ना, वनवा में सब, आप भी सब वनवा में ना, हाँ अच्छे लगते हैं जेवर पहनना भी, हाँ किसको अच्छे लगते हैं, क्या लगता है बोझ लगता है। हम तो अभी पिछले शिविर में गुजरात के भी आए थे, ये ना सौराष्ट्र से आए थे, तो गांव से भी आए थे, वो लाल लाल घाघरा पहनते ना, वो आए थे, तो हमने उनकी माँ, वो माताओं को देखा, सारा कान कटा हुआ क्योंकि इतना वो भारी भारी कान में पहनते थे। तो वे बाबा के बन गए तो यहाँ तो नहीं पहना था, लेकिन फिर भी जो कुछ भी उनको होगा उतार तो सकते नहीं क्योंकि लोक लाज तो है। तो कटा हुआ कान, इतना बड़ा बड़ा अभी कान कटा हुआ, इतना बड़ा बड़ा छेद। तो इसलिए बाबा कई बार कहते हैं वो सोना किस काम का जो कान काटे वो सोना किस काम का जो कान काटे, क्योंकि कान कटा हुआ हो जाता है ना, वो पहनेंगे तो ये कान भी कहाँ तक सहन कर सकेगा इतना बोझ। और कुछ भी पहनेंगे तो चोर तो सामने बैठे ही हैं लूटने वाले। तो इसीलिए बाबा मधुबन में तो बिल्कुल मना करते थे, कभी कोई जेवर वेवर पहन के नहीं आने का। और अगर यहाँ जेवर पहन के आए और फिर मान लीजिए आपने सोचा मैं बाबा की भंडारी में डालूं, तो पहले घर वाले कहेंगे देखा ब्रह्मा कुमारियों को सब देकर आ गए कोई भी कुछ कह दे, अरे पहनो ही नहीं, रखो वहीं, हम नहीं चाहिए बाबा को। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये वैभव भी किस काम के, तो वो भी बुद्धि से हट जाने चाहिए। फिर चौथी चीज क्या याद आती है, घटनाएं, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, न जाने क्या क्या बातें सोचते रहते हैं, सारे जीवन में कितनी बातें हुई होगी भूल। अब बाबा कहते कल की बात आज याद नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो भूलते ही नहीं है। कितनी बातें, वो 10 साल पुरानी बात किसने मुझे कह दिया होगा, कुछ ऐसी गलत चीज जो ठेस लगी होगी, लेकिन आज भी उसको देखेंगे तो वही शब्द याद आएगा। और बाबा हमको इतना कुछ कहते वो तो भूल जाता है, और किसी व्यक्ति ने कुछ कहा तो वो तो उम्र भर नहीं भूलते। और होना क्या चाहिए, जो बाबा कहते वो याद रहे, और बाकी जिन्होंने कुछ भी कहा, कुछ भी हुआ, कुछ भी हुआ, बस 1 सेकंड में फुल स्टॉप। इसीलिए बाबा ने हमको 3 बिंदु बता दिए, बिंदु बनना है, बिंदु को याद करना है, और बिंदु लगाना है, बिंदु ड्रामा। बिंदु लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, पूर्ण विराम हो गया, अर्ध विराम भी नहीं, पूर्ण विराम। कभी भूल से भी उसको फिर याद नहीं करना है, तो घटनाओं को भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर पांचवी बात कौन सी याद आती है? हाँ, घटनाओं के बाद फिर पांचवी बात आती है, कोई भी स्थान, कोई भी स्थान, यहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, वो स्थान याद आते रहते हैं, इधर उधर उधर, ये वो बातें, स्थान। अब बाबा कहते हैं बस दो ही स्थान याद करो। कौन से दो स्थान याद करो? परम धाम जाना है, घर जाना है, नई दुनिया में आना है। चलो और थोड़ा एडिशन करना है तो घर और राजधानी के साथ साथ, परम धाम और सुखधाम के साथ साथ, चलो मधुबन को याद करो। बाबा कई बार कहते हैं अभी मधुबन में भट्टी में आए हैं, जो यहाँ आप अनुभव करके जाएं, और फिर जब वापस जाएंगे कुछ ऐसी बातें हो गई जिसमें आपको थोड़ा दुख हुआ, कुछ हुआ, तो बाबा कहते पहुंच जाओ मधुबन। उस समय क्या, कौन सा स्थान याद करो? मधुबन याद करो, और मधुबन में हमने क्या अनुभव किया था वो याद करो, तो वो बात जो हो गई वो बात भूल जाएगी। तो ये मधुबन याद करो, या चलो अपना सेंटर याद करो, वहाँ पर भी आप बाबा के कमरे में बैठते हो, कितनी आपको शांति मिलती है, कितना अच्छा लगता है, वो याद करो। तो जो याद करना है वो तो करते नहीं, और जिसको याद नहीं करना है वो याद आती है। कई कहते हैं ना मन कंट्रोल में नहीं है, तो मन कंट्रोल में नहीं है का मतलब क्या है? जो बातें याद करनी चाहिए वो याद आती नहीं, और जो बातें भूलनी चाहिए वो बातें भूलती नहीं। कई बार होता ना, कई कहते हैं मैं तो बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ, मुझे तो कुछ बात याद ही नहीं रहती है, कुछ नहीं याद रहता है। लेकिन अगर थोड़ा उनसे बात करने बैठो तो ये बातें वो बातें, पता नहीं कितनी बातें निकल आती है। अभी अभी तो कहा मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है। तो जो बातें याद करनी है वो भूल जाते हैं, और जो बातें भूलनी है वो याद रहती है। इसलिए कहते मैं तो भूल जाती हूँ, भूलते नहीं है। अगर वो भूलते होते सब भूल जाते, खाना खाया भी भूल जाते। कईयों को वो डिमेंशिया होता है ना, बुढ़ापे में कुछ भी याद नहीं रहता। अभी खाना खाया भी, फिर उनसे पूछो खाना खाया, कहते नहीं नहीं, जैसे कि उसको पता ही नहीं, कहाँ गया, गुम हो गया। तो ऐसे जिनका वो याददाश्त शक्ति खत्म हो जाती है, उनको अकेला छोड़ भी नहीं सकते, कहाँ जाएगा उसको घर का ही फिर पता नहीं कहाँ चला गया, उसको कहते हैं भूल जाता है। पर सचमुच वो भूलता नहीं है, यानी जो कई मैं भूल जाता हूँ ये भूलता तो सब भूल जाता, ये भी भूल जाता, लेकिन वो बातें व्यक्ति वस्तु वैभव घटनाएं स्थान ये तो भूलता ही नहीं है। तो जो काम की बात है वो भूल गया, तो कोई बात के लिए कहेंगे अरे मैं तो भूल गया। और फिर जिन बातों के लिए हम कहते भी भूल जाओ, अब भूल जाओ, कैसे भूले कैसे भूले, तो जो बातें भूलनी चाहिए वो कहते कैसे भूले, और जो बातें याद करनी चाहिए कहते हैं भूल गई। इसको कहते हैं मन वश में नहीं होना। हमारी दादी जानकी की ये इतनी बड़ी विशेषता थी, जो काम की बात होती थी कभी नहीं भूलती थी, कभी भी नहीं भूलती थी। अरे हम भूल जाएंगे, दादी नहीं भूलती थी। और जो बेकार की बातें वो कभी याद भी नहीं करती थी, जिनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये सब दादियों से हमने सीखा। तो अगर हमें संपन्न संपूर्ण बनना है तो क्या करना होगा? एक है संपन्न, दूसरा है संपूर्ण, ये दो अलग शब्द हैं। संपन्न और संपूर्ण हम चंद्रमा को देख सकते हैं। जब पूर्णमासी होती है तो संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। संपन्न माना प्रकाश में संपन्न, फुल प्रकाश चंद्रमा का दिखाई देता है पूर्णमासी में, और संपूर्ण माना संपूर्ण गोलाकार, गोलाकार। वो दिखाई देता है। इसको कहेंगे संपूर्ण और संपन्न, प्रकाश में संपन्न और आकार में संपूर्ण। तो बाबा भी हमें यही सिखाते क्या कैसे हमें ये बनना है, और देवताओं की महिमा में भी हम यही गाते हैं सर्व गुण संपन्न। तो संपन्न माना सभी गुणों में संपन्न, और 16 कला संपूर्ण। तो संपन्न बनना है गुणों में और संपूर्ण बनना है कलाओं में। और कौन सी कलाएं? पवित्रता की कलाएं। तो पवित्रता की कलाओं में संपूर्ण, जैसे चंद्रमा, फुल मून, रोज कला घटती जाती है या बढ़ती जाती, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, और पूर्णमासी माना संपन्न और संपूर्ण। तो बाबा कहते हैं तुम्हें संपन्न भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है, सर्व गुणों में संपन्न बनना है। देवताएं सर्व गुणों में संपन्न थी, देवताएं थे। कैसे थे, कैसे बनेंगे? जब एक से सर्व गुण लेंगे, सर्व शक्तियां लेंगे एक से, क्योंकि उस एक में सर्व गुण है, सर्व शक्तियां हैं। शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, शक्ति चाहिए, खुशी चाहिए, जो चाहिए हम बाबा से ले सकते हैं, जो भी चाहिए। तो सर्व गुणों में संपन्न बन जाएंगे। इसलिए तपस्वी जीवन माना एक से सर्व संबंध, और उनसे सर्व गुण खींचने। चलो वो तो कहेंगे बाबा की याद भूल जाती है, तो दूसरा तरीका है एक एक से गुण उठाना, तो सर्व गुण संपन्न बन जाएंगे। एक एक में कोई ना कोई गुण जरूर होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई आत्मा नहीं जिसमें कोई भी गुण ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सब भगवान के बच्चे तो है ना हम कहते हैं। इसलिए हर एक से गुण उठाओ। वो तो दत्तात्रेय ऋषि के लिए बताते हैं कि उसने सबको अपना गुरु माना, सबसे गुण लिया। एक वो मिसाल भी देते हैं, घड़ी घड़ी से भी गुण उठाओ, पंखे से भी गुण उठाओ, है ना, वो आप बताते हैं ना। तो घड़ी से क्या गुण उठाओ, चलते चलना है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। चलो अगर रुक भी गई ना घड़ी, तो भी दिन में 2 बार तो सही टाइम देती है। अगर घड़ी रुक भी गई तो क्या कहेंगे, रुक गई ना, तो एक एक जगह रुक गई, पर 2 बार तो वो टाइम तो आएगा ना, वही टाइम 2 बार आएगा दिन में 12-12 घंटे के बाद। तो इसीलिए रुकी हुई घड़ी में भी से भी गुण लो कि 2 बार तो उसमें वो सही टाइम देती है। पंखे से क्या गुण लो, हाँ, बांटते जाओ, हवा देते जाओ, देते जाओ। तो एक एक चीज से गुण उठा सकते हैं। तो जब चीजों से गुण उठा सकते हैं तो व्यक्तियों से क्यों नहीं उठा सकते? लेकिन वो नजर ऐसी चाहिए जो उसका गुण उठाए, गुण देखे। तो सर्व गुण में संपन्न तब बनेंगे। या तो बाबा से लेना है, चलो बाबा इतना याद नहीं रहता है, फिर भी व्यक्ति वस्तु ये सब याद रहते हैं, तो व्यक्ति वस्तु से भी गुण लो। अगर वो याद भी रहता है तो क्या करो, उनसे भी गुण लो, तो उससे फायदा होगा। केवल याद करने से क्या फायदा होगा? और फिर 16 कला संपूर्ण माना पवित्रता की इतनी संपूर्ण कला हो जो जरा भी कमी ना हो। बाबा पवित्रता की कितनी गहराई बताते हैं, कितनी गहराई, यहां तक कि बाबा कहते हैं स्वप्न भी आपके इतने शुद्ध हो, क्योंकि स्वप्न पर मनुष्य का कंट्रोल नहीं है। पर हां, वो स्वप्न भी किस आधार पर आते हैं, हमारे ही संस्कारों का वो प्रतिबिंब है। हमारे संस्कारों का प्रतिबिंब है हमारे स्वप्न। तो अगर स्वप्न हमारे शुद्ध हैं, माना हमारे संस्कार भी शुद्ध हैं, तो स्वप्न में भी किसी प्रकार की अशुद्धि न हो, तब कहेंगे हाँ हम संपूर्ण पवित्रता की ओर जा रहे हैं। साकार मुरलियों में बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे मन से अगर कोई कुछ भी कोई भी विकार के वश है या कोई भी संकल्प बुरे आते हैं, नेगेटिव आते हैं, हर जाने पर कर्म में मत लाओ। अब किसको लगता है मैं इसको मारूं, हाँ मारूं, परंतु नहीं, इंद्रियों से हमें किसको हाथ नहीं लगाना, ये हाथ किसी को मारने लिए नहीं है, ये हाथ तो आशीर्वाद के हाथ है, हाथ आशीर्वाद के है, दाता के हाथ है, ऐसे थप्पड़ मारने के नहीं है, किसी को दुख नहीं देना है। तो चलो हमने अंदर में कंट्रोल किया, ये हाथ गलत कर्म नहीं करने हैं, लेकिन मन में भी ना आए। अव्यक्त बाप दादा तो वहां तक कहते हैं, साकार में तो बाबा फिर भी कहते हैं कर्म में नहीं आओ, कर्म में अगर गलत काम किया तो 100 गुना सजा है, पर मन में आया तो चलो कोई बात नहीं, आप बाबा को याद करो। पर बाबा तो यहां तक अव्यक्त मूल्यों में कहते हैं मन में भी ना आए, या और आगे स्वप्न में भी ना आए। तो स्वप्न में भी ना आए उसके लिए तपस्या चाहिए, बहुत तपस्या चाहिए, अशरीरी स्थिति चाहिए, देह से न्यारी स्थिति चाहिए। अशरीरी स्थिति भी तब बने जब पहले बाबा कहते देही अभिमानी बने, देह अभिमान को मारो। कैसे मारेंगे देह अभिमान को? पहले तो मैं को मारो, मेरा को मारो, ट्रस्टी बन जाओ, सब बाबा का है, ग्रस्ती नहीं हूं मैं, ट्रस्टी हूं, ये योगी की पहली निशानी। वो कभी भी अपने को ग्रस्ती नहीं समझेगा। उस दिन भी बाबा ने कहा राज ऋषि हो, ऋषि भी ग्रस्त में रहते थे, बाल बच्चे थे, पत्नी बच्चे सब ऋषियों को दिखाते हैं, लेकिन कोई ऋषि तो इतने पहुंचे हुए और कोई ऋषि बाबा ने नाम लिया दुर्वासा ऋषि, है ना, शास्त्रों में आता है दुर्वासा ऋषि, इतना क्रोधी था, सब उसे डरते थे, सारे देवताएं भी डरते थे, कहीं ये गुस्सा कर लिया, इसने श्राप दे दिया तो खत्म हम, तो इसलिए दुर्वासा ऋषि से। पर था वो ऋषि, क्योंकि पवित्र रहता था तो था वो ऋषि, लेकिन क्रोधी था बहुत। तो इसीलिए बाबा कहते तुम राज ऋषि हो, राजाई के लिए ऋषि बने हो, तुम सन्यासी नहीं हो, तुमने कुछ भी छोड़ा नहीं है। वो सन्यासी तो छोड़ देते हैं, गृहस्थी भी छोड़ देते हैं, बाल बच्चे भी छोड़ देते हैं, लेकिन बाबा कहते तुमको कुछ भी छोड़ना नहीं है। यहां तक कि बाबा कहते चलो शादी में जाना है, चलो कोई बात नहीं, भले पहनो ना रंगीन कपड़े, मना थोड़ी करते बाबा, गहने पहनो, भले शादी में जा रहे हो, लोक संग्रह अर्थ करना पड़ता है, लेकिन उसमें मोह न हो। बाबा मना भी नहीं करते, इसलिए बाबा कहते छोड़ना भी नहीं है, लेकिन बाबा ये भी सावधानी देते फंसना भी नहीं है। एक होता है छोड़ दिया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, छोड़ दो चले जाओ, न सामने होगा न याद आएगा न दिखाई देगा, पर दूसरा है छोड़ना भी कुछ नहीं है, सामने भी है लेकिन फिर भी फंसना नहीं है। तो छोड़ना भी नहीं है, फंसना भी नहीं है, और तीसरा क्या नहीं करना है, नया जोड़ना भी नहीं है, क्योंकि नया बंधन नहीं बनाना है, नया बंधन बनेगा तो फिर वो तो छूटना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कोई नया बंधन चाहे संबंध के रूप में वो भी जरूरत नहीं है अभी, वैसे ही सब बंधन खत्म होने हैं, तो नया भी नहीं जोड़ना है। तो न छोड़ना है, न फंसना है, न नया जोड़ना है। तो करना क्या है? ये तो छोड़ना, ये तो न नहीं करना है। तो करना क्या है? निभाना है। बाबा बार बार मुरली में शब्द यूज करते, तोड़ निभाना है। तोड़ शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तोड़ माना अंत तक, निभाना भी है, और दूसरा है बुद्धि से तोड़ना भी है। तो तोड़ना भी है और निभाना भी है साथ साथ, पर छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ के कहाँ जाएंगे? अगर कर्मों का हिसाब किताब है तो वो तो पीछा करेंगे ना, इसीलिए छोड़ के जा भी नहीं सकते, लेकिन फंसना भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, नया तो बिल्कुल नहीं जोड़ना है, बिल्कुल नहीं। एक बच्चा और मिल जाए, हाँ बाबा कहते शिव बाबा को बच्चा बना लो। पिछले ग्रुप में एक माता आई थी, तो क्लास था सर्व संबंध एक से कैसे जोड़े, तो बाबा को बच्चा भी बना लो। तो बाबा को बच्चा बना दिया तो और बच्चे की तो जरूरत नहीं होगी ना, कि बच्चा चाहिए क्या, चाहिए क्या किसी को नहीं 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 ऐसे करते भाइयों को एक बच्चा चाहिए क्या? तो ये संबंध तो है नहीं, बंधन ही है। अगर अगर नहीं है कोई बात नहीं, बाबा को बना लो, बाबा आपकी बहुत सेवा करेगा, बहुत सेवा करेगा बाबा। अब बना के तो देखो। इसलिए कई बार जब बाबा कहते हैं ना कि भाई कितने बच्चे हैं, तो कहेंगे बच्चे बाबा बच्चे सीख गए हैं, भाई बोलो तीन लौकिक एक अलौकिक, हाँ ऐसे जब ऐसे देते, तीन लौकिक एक अलौकिक। लेकिन बाबा कहते हैं तीन लौकिक और एक अलौकिक, माना बाबा जो अलौकिक है उसको लास्ट में रखा, और होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए हाँ? पहले क्या कहना चाहिए? हाँ, एक अलौकिक और तीन लौकिक। तो अगर तीन को एक के बाद रखेंगे तो वो तीन उस एक की कार्बन कॉपी बन जाएंगे, और तीन को पहले रखा फिर एक को रखा तो वो तो शिव बाबा की कार्बन कॉपी तो नहीं बन सकते ना। और वो तो सब कर्मों का हिसाब किताब है, जो भी आपके तीन लौकिक भी है मान लो, वो तो कर्मों का हिसाब किताब है। शिव बाबा के साथ कर्मों का हिसाब किताब तो है ही नहीं, और क्योंकि वो तो सदा सुखदायी है, वो तीन तो दुख भी दे सकते हैं, क्योंकि जैसा कर्मों का हिसाब किताब होगा उस अनुसार रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि सच्चा तपस्वी जीवन माना एक से सर्व संबंध, एक को ही देखना, एक से ही लगन लगाना, एक नामी बनना, इकोनॉमी भी रखना, एक व्रता बनना, जो हमने दादी में देखा, एक व्रता, एक एक की लगन में मगन, कहीं और जगह आंख डूबी नहीं, गई नहीं। मम्मा भी बिल्कुल, सब सब दादियों को हम देख, तभी तो दादियां कहलाती है, बस हमें उनका अनुसरण करना है। तो पहले तो देही अभिमानी बनना पड़ेगा, फिर देही अभिमानी बनने के साथ फिर बाबा कहते विदेही बनना है। विदेही माना देह में रहते विदेही, सब कुछ संभालते उसमें मोह न हो, इसको कहेंगे विदेही। और मिसाल बाबा किसका देते हैं? राजा जनक का, विदेही राजा, विदेही राजा। इतने बड़े महलों में रहता था लेकिन जरा भी मोह नहीं था महलों का, विदेही राजा था, विदेही। तो पहले देही अभिमानी, फिर विदेही अभिमा विदेही, और फिर बाबा कहते हैं अशरीरी, अशरीरी, क्योंकि घर जाना है आत्मा को, ये देह भी यहाँ ही छोड़ना है, आप मोए मर गई दुनिया, देही अभिमानी में तो फिर भी देह साथ में है, कर्म कर रहे हैं, चलो कर्म में फंसते नहीं है पर कर्म तो कर रहे हैं ना। पर अशरीरी माना जैसे देह से न्यारे, बिल्कुल ये योग की स्थिति है। जैसे बाबा हमारा अशरीरी है, उनको अपना कोई देह नहीं है, तो ये शरीर भी मेरा कहाँ है? अगर है तो बाबा ने हमें दिया है सेवा के लिए। हमारी दादी जानकी सदा ये कहती थी, हाँ इतने देश विदेश घूमती रहती थी दादी, तो दादी कहती थी मैं तो कठपुतली की तरह हूँ, बाबा हमको नचाता है। जैसे कठपुतली होती है ना, वो नचाने वाला ऊपर उसकी उंगलियों पर वो ये रस्सियाँ धागे होते हैं, और वो जैसे नचाए वैसे कठपुतली नाचती है। तो बाबा ने तो हमको कठपुतली बना दिया है, बस वो नचाता है मैं नाचती हूँ, मैं अपना पुरुषार्थ नहीं। कठपुतली थकती होगी क्या? वो नाचती रहती है। और जिसके उंगलियों में वो होगा धागा वो थक जाता होगा, पर कठपुतली तो कहाँ थकती है। तो इसीलिए हम बाबा की कठपुतलियाँ हैं। अगर ये सदा ऐसे समझेंगे तो क्या होगा, हम सच सही देही अभिमानी भी बन सकेंगे, अशरीरी भी बन सकेंगे और संपन्न संपूर्ण भी बन सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी समझा सभी ने? हाँ ठीक है, चलो बहुत अच्छा।
तो अवश्य ही
यहाँ पर किसी का देखो ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है, आप कृपया अपना मोबाइल स्विच ऑफ करें, या ट्रैफिक कंट्रोल बजाने की जरूरत नहीं आपके मोबाइल में, ये आपको सारा दिन मिलता रहेगा। हाँ कोई भी अपने मोबाइल में ट्रैफिक कंट्रोल के गीत नहीं रखिए, यहाँ बजाए, बंद ही कर दे तो अच्छा है।
तो बहुत सुंदर, अवश्य आपको मार्गदर्शन मिला होगा भक्ति की सफलता के लिए। तो दीदी का हम एक हाथ हिलाकर धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।
जो आए मधुवन
मौन तपस्या भट्टी करने, आप जो आए मधुवन
दिल से करते आप सबका,
दिल से करते आप सबका स्वागत है अभिनंदन।
बाबा कहते आओ बच्चे मेरे प्यारे नूर रतन,
बाबा कहते आओ बच्चे मेरे प्यारे नूर रतन।
स्वागतम 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 स्वागतम। मधुबन बेहद घर में अपने बाबा
माँ कहते बच्चे आओ।
ओ मधुबन बेहद घर में अपने बाबा कहते बच्चे आओ।
भट्टी में रूहानी खुशबू,
भट्टी में रूहानी खुशबू,
चाहूं और तुम फैलाओ।
अपने घर में अपनों के संग ये रूहानी स्नेह मिलन,
अपने घर में अपनों के संग ये रूहानी स्नेह मिलन,
ये रूहानी स्नेह मिलन।
अचल अटल निश्चय बुद्धि, ये है निश्चिंत बेफिकर।
ओ अचल अटल निश्चय बुद्धि, ये है निश्चिंत बेफिकर।
मीठे बाबा से रूबरू करते,
मीठे बाबा से रूबरू करते,
आप सभी मधुबन आकर।
वहाँ रे वहाँ मीठे बाबा, गाती है दिल की धड़कन।
बाहर वहाँ मीठे बाबा, गाती है दिल की धड़कन,
गाती है दिल की धड़कन। स्वागतम 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 स्वागतम।
चारों धाम की यात्रा करके जीवन को सफल बनाएं।
ओ चारों धाम की यात्रा करके जीवन को सफल बनाएं।
साकार कर्म भूमि मधुबन,
साकार कर्म भूमि मधुबन,
बाबा की याद हो जाए।
करुणा दीजिए आपका भी,
हम सब करते अभिवादन, हम सब करते अभिवादन।
बाबा कहते आओ बच्चे,
बाबा कहते आओ बच्चे,
मेरे प्यारे नूर रतन।
मौन तपस्या भट्टी करने
आप जो आए मधुबन,
स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम।